फ़कत खुदा के लिए। शहीद के एक दोस्त बयान करते हैं, मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था। वो मग़रबी महाज पर एक हमले के दौरान ज़ख्मी हो गया था। उसके पांव पर काफ़ी गहरे ज़ख्म आए थे। वो मुझे देखते ही खुश हो गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन मैं उसके शुक्रिया अदा करने की वजह न समझ सका। मेरे दोस्त ने कहा, सैयद जान, तुमने बहुत ज़हमत की, अगर तुम मुझे उठाकर पीछे की तरफ न लाते तो मैं हतमन असीर हो जाता। मैंने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सबसे पहले जीप में बैठकर पीछे की तरफ लौट आया था और छुट्टी लेकर घर आ गया था। मेरा दोस्त हैरत से कहने लगा, नहीं यार, वो तुम ही तो थे, तुमने मेरी मदद की और मेरे पाँव के ज़ख्म को बांधा था। लेकिन मैंने जितना इनकार किया वो न माना। कुछ वक्त गुजरा तो मैंने एक बार फिर इस दोस्त की बातों पर गौर किया। अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ, मैं भागा भागा इब्राहिम की तरफ चला गया। वो भी इस हमले में शामिल था और छुट्टी पर आया हुआ था। उसे साथ लेकर फिर उस दोस्त के घर चला गया। मैंने उससे कहा, जिसका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इब्राहिम है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पहाड़ पर 8 किलोमीटर तक किसी को उठाकर चलूं और उसे दुश्मन के इलाके से वापस निकाल कर लाऊं। लिहाजा मैं समझ गया था ये किसका काम हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो कम गो हो, मेरी जैसी जिसामत का मालिक हो, बहुत ज़्यादा जिस्मानी क़ुव्वत से लबरेज हो और मुझे जानता भी हो। मैं अच्छी तरह समझ गया कि इब्राहिम के अलावा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन इब्राहिम तो कुछ बताता ही नहीं था। मैंने कहा, इब्राहिम, मुझे अपने दादा की कसम, अगर तुमने कोई बात न की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। लेकिन इब्राहिम मेरी इस हरकत से काफ़ी गुस्से में था, कहने लगा, सैयद, क्या बताऊँ? इसके बाद खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, मैं खाली हाथ पीछे की तरफ पलट रहा था, ये एक जगह पड़े हुए थे, मेरे ताक़ुब में भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं तकरीबन आखिरी नफर था जो वापस पलट रहा था। इस तारीकी में मैंने अपने बूटों के तस्मों के साथ उसके पाँव से बहने वाले खून को बंद किया। इसके बाद हम चल पड़े। रास्ते में ये मुझे सैयद सैयद कहकर बातें करते जा रहे थे। मैं भी समझ गया कि तुम्हारे दोस्त होंगे, इसलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि हम इमदादी कैंप पहुँचे और मौजूद मेडिकल स्टाफ तक पहुँच गए। इसके बाद इब्राहिम को मुझ पर बहुत गु़स्सा आया। कुछ दिन तक तो उसने बात तक नहीं की। मैं उसकी वजह समझता था। वो हमेशा कहता था कि काम फ़कत खुदा के लिए करना चाहिए, न कि लोगों को बताने के लिए। जासूसी पे मामूर ग्रुप के साथ हम दुश्मन के इलाके में घुस गए। जासूसी का फरीजा अंजाम दे रहे थे कि अचानक हमें भेड़ों का एक गल्ला नज़र आया। गल्ले के चरवाहे ने हमारे नज़दीक आकर सलाम किया। उसके बाद पूछने लगा, तुम लोग खुमैनी के सिपाही हो? इब्राहिम ने बढ़कर जवाब दिया, हम खुदा के बंदे हैं। उसके बाद पूछा, बाबा जी, आप इस पहाड़ी इलाके और वीराने में क्या कर रहे हैं? इसने जवाब दिया, मैं यहीं रहता हूँ। उसने दोबारा पूछा, तो आपको यहाँ कोई मुश्किल नहीं पेश आती? उस बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुश्किल ना होती तो यहाँ से चला जाता। इब्राहिम अपने सामान की तरफ गया और वहाँ से एक टोकरी खजूरों की, कुछ रोटियाँ और ग्रुप के जवानों के सामान में से भी कुछ सामान लाकर बूढ़े को दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए इमाम खुमैनी की तरफ से तोहफा है। वो बूढ़ा बहुत ही खुश हुआ और दुआएँ देने लगा। इसके बाद हम वहाँ से दूर हो गए। बाज़ जवानों ने इब्राहिम पर एतराज़ भी किया कि हमें इस इलाके में अभी एक हफ्ते रहना है, तुमने ज़्यादातर सामान तो बूढ़े को दे दिया है। इब्राहिम ने कहा, पहली बात तो यह है कि अभी तक सही मालूम नहीं है कि हमारा काम कितने दिन तक जारी रहेगा। दूसरी बात यह है कि तुम लोग मुतमईन रहो, ये बूढ़ा अब हमारा दुश्मन नहीं रहा। तुम्हें शक नहीं करना चाहिए कि खुदा के लिए किया जाने वाला काम हमेशा अपना असर दिखाता है। इस जासूसी में खाने पीने का सामान काफ़ी कम हो जाने के बावजूद हमारा काम बहुत जल्द निमट गया, हत्ता कि कुछ सामान हम बचा कर भी ले आए। उलमा की महफिल में अमीर मिंजर बयान करते हैं कि जंग का पहला साल था, मैं छुट्टी पर आया हुआ था। मैं और इब्राहिम मोटरसाइकिल पर सरासिब चौक से खुरासान चौक की तरफ जा रहे थे। वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। एक सड़क से गुजरे तो अचानक इब्राहिम ने कहा, अमीर, ठहरो। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल सड़क की एक तरफ मोड़ दी और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे पास वक्त है तो एक बंदा खुदा से मिलने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं, कोई ख़ास काम नहीं है। हम दोनों एक घर में दाखिल हो गए। कई बार या अल्लाह कहने के बाद एक कमरे के अंदर चले गए। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। एक मुअम्मिर शख्स काली आबा पहने महफिल की मरकजी जगह पर बैठे हुए थे। हम दोनों ने सलाम किया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गए। वो आलिम किसी जवान से कुछ बात कर रहे थे जो अब ख़त्म हो गई थी। उन्होंने हमारी तरफ रुख किया और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, आगा इब्राहिम, आज इधर किधर से भटक कर आ गए। इब्राहिम सर झुका कर बैठा हुआ था, अदब से कहने लगा, हाजी आगा, शर्मिंदा हूँ, दरअसल खिदमत में पहुँचने का वक्त ही नहीं मिलता। इनकी आपस की बातों से मैं समझ गया कि वह इब्राहिम को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने थोड़ी सी देर एक दूसरे से बातें की। जब कमरा खाली हो गया तो उन्होंने इब्राहिम की तरफ रुख किया और इंतहाई मुनकसराना लहजे में कहने लगे, आगा इब्राहिम, हमें कुछ नसीहत कीजिए। इब्राहिम शर्म के मारे सुर्ख हो गया और सर उठा के कहने लगा, हाजी आगा, आपको खुदा का वास्ता, हमें शर्मिंदा ना कीजिए, मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसी बात न कीजिए। उसके बाद कहने लगा, हम इसलिए आए हैं कि आपकी ज़ियारत कर सकें, इंशाल्लाह हफ्तावार दर्स में ज़रूर हाज़िर होंगे। इसके बाद हम उठ खड़े हुए और खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से निकल आए। रास्ते में मैंने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम जान, तुम भी इन आगा को कोई नसीहत कर देते, इतना सुर्ख होने की क्या वजह थी? मेरी बात पर गुस्से से उछल पड़ा, क्या कह रहे हो मीर जान, तुम इन आगा को जानते हो? मैंने कहा, नहीं, सच बताओ, वो कौन थे? उसने जवाब दिया, वो एक वली अल्लाह हैं मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ये हाज मिर्ज़ा इस्माइल दुलाबी थे। कई साल गुजरे तो लोगों ने हाज आगा दुलाबी को पहचाना। मुझे भी हाल में ही उनकी किताब तूबाए मोहब्बत पढ़ने के बाद समझ आई कि इब्राहिम को जो जुमला उन्होंने कहा था वो कितना अजीम था। मुल्क के मगरबी हिस्से में भेजी जाने वाली मुहिमों में से एक अपने अख्तिताम को पहुँच चुकी थी, लिहाजा अक्सर मुजाहिदीन की हम आहंगी से तय पाया कि सब मिलकर इमाम खुमैनी से मुलाकात के लिए जाएं। अगरचा इब्राहिम इस मुहिम में शरीक था मगर इसके बावजूद तहरान नहीं गया। मैंने जाकर उससे पूछा, तुम क्यों नहीं गए? ने जवाब दिया, वैसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग महाज को खाली छोड़कर चले जाएँ, यहाँ कुछ लोगों का होना ज़रूरी है। मैंने पूछा, वाकई तुम इसी वजह से नहीं गए? थोड़ी सी देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, हमें देखने और मुशाहिदा करने के लिए रहबर नहीं चाहिए बल्कि इसलिए चाहिए कि उसकी इताअत करें। इसके बाद उसने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा, मैं अगर अपने रहबर को नहीं देख सकता तो ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि मैं उनके फरमान का ताबे रहूँ और मेरे रहबर मुझसे खुश रहें। विलायत फ़कीह के हवाले से इब्राहिम बहुत हसास था। वो इमाम के बारे में अजीब व गरीब किस्म के नज़रियात रखता था। वो कहा करता था, कदीम और जदीद उलमा और बुजुर्गान में से कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर इमाम खुमैनी जैसी जुर्रत और बहादुरी मौजूद हो। जो भी इमाम खुमैनी का कोई पैगाम नशर होता वो बहुत गौर से सुनता और कहता, अगर हम दुनिया और आखरत चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इमाम की बातों पर अमल करें। इब्राहिम अपनी जवानी के दिनों में भी अपने इलाके के अक्सर उलमा से राबता रखता था। जिन दिनों अल्लामा जाफरी हमारे महल्ले में रहते थे, इब्राहिम ने उनके वजूद से बहुत ज़्यादा कस्बे फैज़ किया। इब्राहिम के नज़दीक शहीद आयतुल्ला मुतहरी, शहीद आयतुल्ला बहिश्ती जवान नस्ल के लिए बेहतरीन और मुकम्मल तरीन नमूना थे। आगा जब्बार और मेहदी फरीदवंद बयान करते हैं कि जंग का पहला साल था। अंदाजगो ग्रोह के कुछ जवानों के साथ हम गिलाने गर्ब के शुमाली इलाके में मौजूद चोटियों पर गए। बिल्कुल सुबह का वक्त था। हम सरहद के बिल्कुल साथ ही वाक़े एक टीले पर जा ठहरे। सरहद पे वाक़े फौजी चौकी इराकियों के कब्ज़े में थी। इराकी गाड़ियां पूरे इत्मीनान से वहां की सड़कों पर घूम रही थीं। इब्राहिम ने दुआओं वाला किताबचा खोला। हम सब ने मिलकर ज़ियारत आशूरा पढ़ी। इसके बाद मैंने दुश्मन के मकबूज़ा इलाकों पर हसरत भरी निगाह डालकर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम जान, इस सरहदी रास्ते को देखो, इराकी कितने सुकून से इस पर जा रहे हैं। इसके बाद मैंने हसरत से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन हमारे लोग इन रास्तों पर इत्मीनान और सुकून से चल फिर सकें और अपने शहरों को वापस पलट सकें। ऐसा लगता था कि इब्राहिम का मेरी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं है। वो दूर अपनी नज़रें गाड़े हुए था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या कह रहे हो, एक दिन आएगा इसी रास्ते से लोग टोलियों की शक्ल में करबला की तरफ सफ़र करेंगे। वापसी पर मैंने जवानों से पूछा, क्या आप लोग इस सरहदी चौकी का नाम जानते हैं? एक जवान ने कहा, मिर्ज खसरवी। इस वाकये के 20 साल बाद हम करबला गए। मेरी नज़रें इसी चोटी पर थीं जिसकी बुलंदी पर बैठकर इब्राहिम ने ज़ियारत आशूरा पढ़ी थी। मैं गोया इब्राहिम को देख रहा था कि वह हमें रुख्सत कर रहा है। वो चोटी मिर्ज खसरवी के इलाके के बिल्कुल सामने थी। उस दिन बसें सरहद की तरफ जा रही थीं। उसी रास्ते से लोग टोलियों की शक्ल में करबला की ज़ियारत को जा रहे थे। हम जब भी तहरान में होते थे तो हर शब जुमा को हज़रत अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत पर जाना इब्राहिम का मामूल था। कहा करता था, शब जुमा खुदा की रहमत की रात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की शब है, सारे औलिया और मलाइका करबला जाते हैं। हमें भी ऐसी जगह जाना चाहिए कि जिसके बारे में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इस जगह की ज़ियारत करबला की ज़ियारत जितना सवाब रखती है। इसके बाद वो उसी जगह दुआए कुमैल पढ़ता था और रात के 1 बजे वापस आ जाता। जिस ज़माने में बसीज के प्रोग्राम शुरू हुए तो वो ज़ियारत के बाद सीधा मस्जिद में बसीजी जवानों के पास आ जाता। एक रात हम इकट्ठे ही हरम से बाहर निकले। मुझे चूंकि जल्दी थी इसलिए मैं एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर मस्जिद आ गया, लेकिन इब्राहिम 2-3 घंटे बाद पहुंचा। मैंने पूछा, इब्राहिम जान बहुत देर लगा दी? कहने लगा, हरम से पैदल ही निकल पड़ा था ताकि रास्ते में शेख सुद्दूख की ज़ियारत भी करता जाऊँ, क्योंकि तहरान के पुराने लोग कहते हैं कि इमाम ज़माना आजल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ शब जुमा को शेख सुद्दूख की ज़ियारत के लिए आते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छे, मगर पैदल क्यों? उसने सही जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम्हें तो मस्जिद में आने की जल्दी थी लेकिन तुम पैदल आए, इसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। मेरे इसरार पर उसने जवाब दिया, हरम से बाहर आया तो एक बहुत ही मोहताज और ज़रूरतमंद शख्स मेरे पास आया। मैंने अपने जेब में पड़े पैसे उसे दे दिए। जब टैक्सी पर सवार होने लगा तो देखा कि किराए के पैसे नहीं बचे, इसीलिए पैदल आना पड़ा। हर हफ्ते के आखिर में हम इकट्ठे ही ज़ियारत पर जाते थे और आधी रात के वक्त बहिश्त ज़हरा में शुहदा की कब्रों पर जाते थे। इसके बाद इब्राहिम हमारे सामने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किया करता। बाज़ औक़ात खबर के अंदर चला जाता और अजीब हालत में रोते हुए पुरसोस आवाज़ में दुआए कुमैल पढ़ता था। अली मुकद्दम बयान करते हैं कि मारकाए मतलअुल फ़ज्र से पहले की बात है, बेहतर मंसूबा बंदी के लिए सिपाहे पासदारान और फ़ौज के कमांडर्स के दरमियान अंदाज़गो ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई। मैं, इब्राहिम, फ़ौज के 3 और सिपाह के 3 अफसरान इस मीटिंग में शामिल थे। कुछ जवान सहन में फ़ौजी तरबियत ले रहे थे। मीटिंग के दौरान सब महवे गुफ्तगु थे कि अचानक कमरे की खिड़की से एक दस्ती बम अंदर की तरफ फेंका गया। वो बिल्कुल कमरे के दरमियान में आ गिरा। खौफ से मेरा रंग उड़ गया। कमरे में जहां मैं बैठा था वहीं अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और दीवार की तरफ मुंह करके पांव के बल बैठ गया। चंद लम्हों के लिए मेरी सांस सीने में अटक कर रह गई। दूसरे लोग भी मेरी तरह दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए। वो लम्हात काफ़ी मुश्किल से गुजरे थे लेकिन अभी तक बम फटने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैंने बहुत आहिस्ता से अपनी आँखें खोलीं और अपनी उंगलियों के फासले से कमरे के दरमियान देखा। मेरी आँखों ने जो मंज़र देखा वो नाकाबिले यकीन था। मैंने अपना सर उठा लिया और हैरत से फटी फटी आँखों से इब्राहिम को देखते हुए कहा, आगा इब्राहिम। सब लोगों ने भी कमरे के कोनों में एक एक करके अपना सर उठाया। सब उड़ी हुई रंगत के साथ कमरे के दरमियान देख रहे थे। बहुत ही अजीबोगरीब मंजर था। हम सब के सब तो कमरे में इधर उधर बिखर गए थे, मगर इब्राहिम बम के ऊपर लेट गया था। इसी दौरान ट्रेनिंग अफसर कमरे में दाखिल हुआ। उसने सबसे माजत ख्वाही करते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये प्रैक्टिस वाला बम था जो गलती से कमरे में आन गिरा। इब्राहिम बम पर से हट गया। वो जंग का पहला साल था, लेकिन इस वक्त तक ऐसा कोई इत्तेफाक पेश नहीं आया था। वो बम गोया हमारी मर्दानगी का इम्तिहान लेने आया था। इसके बाद इस बम वाला वाकया सब जवानों में मशहूर हो गया। मतलौल फजर। हुसैन अल्लाह करम बयान करते हैं कि बनी सदर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से मौजूल हुए कुछ अरसा गुजर चुका था। इराकी फौज का दबदबा ख़त्म करने के लिए जंग के शुमाली, मगरबी और जनूबी महाजों पर कुछ हमलों की मनसूबा बंदी की गई। 29 नवंबर को पहला बड़ा हमला तारीखुल अक़दस बुस्तान की आज़ादी के लिए किया गया। इसमें बासी हुकूमत की फ़ौज को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफसरान की हमाहंगी के मुताबिक दूसरा हमला गीलाने गर्ब से लेकर सरपल जहाब के इलाके तक करना था, जो बगदाद शहर का करीब तरीन महाज था। इसलिए काफ़ी अरसे पहले इस इलाके की जासूसी और फौजों की तैयारी का काम शुरू हो चुका था। इस इलाके में किए जाने वाले हमले गीलाने गर्ब कोर के हेडक्वार्टर की जेर निगरानी अंजाम पाना थे। अंदाजगो ग्रुप के तमाम जवान कमर बस्ता थे। दुश्मन के इलाकों की जासूसी का फरीजा इब्राहिम के कंधों पर था। ये काम थोड़े ही से अरसे में मुकम्मल तौर पर अंजाम पा गया। इब्राहिम मालूमात और मुखबिरी के लिए एक कुर्द जवान को साथ लेकर दुश्मन की फौज के ताकुब में गया। वो एक हफ्ते के दौरान निफ्त शहर तक पहुँच गए थे। इस अर्जे में इब्राहिम ने महाजे जंग के बहुत ही अच्छे नक्शे तैयार कर लिए थे। इसके बाद वो चार इराकियों को भी कैद करके अपने कैंप में वापस आ गए। इब्राहिम ने इन कैदियों से पूछगछ करने और कुछ मालूमात लेने के बाद हमलों के लिए नक्शों को मुकम्मल किया और अफसरान की होने वाली मीटिंग में उन्हें पेश कर दिया। फौज की जुल्फिकार ब्रिगेड से कर्नल अली यारी और मेजर सलामी भी सिपाह के जवानों के साथ मिल गए। सरपल जहाब से लेकर गीलाने गर्ब तक मुकामी फौजियों में से अक्सर को मुख्तलिफ बटालियंस में तकसीम कर दिया गया। दाजगो ग्रुप के अक्सर जवान इन बटालियन के इंचार्ज मुकर्रर हुए। सिपाह और रजाकारों की कुछ बटालियंस ने बतौर हरावल दस्तों के हमले शुरू करने की जिम्मेदारी अपने सर ली। आखिरी मीटिंग में आला अफसरान ने इब्राहिम को हमलों के मरकजी महाज, बरादर सिफर खुशरवान को बाएं महाज और बरादर दरियूश जीरावंदी को दाएं महाज का कमांडर मुंतखब किया और गोरख ओ हाजियान की घाटियों और सरहदी चौकियों पर कब्जा करना बताया गया। हमले वाले इलाके का रकबा तकरीबन 70 किलोमीटर था। कमांड सेंटर से ये इत्तला पहुंची थी कि इस हमले के फौरन बाद मरियवान के इलाके पर तीसरा हमला कर दिया जाएगा। तमाम मामलात मुकम्मल हमाहंगी से तय पा रहे थे। हमला शुरू होने से कुछ दिन पहले सिपाह के मरकजी दफ्तर से ये इत्तला मिली कि इराक ने बुस्तान का इलाका वापस लेने के लिए एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर ली है। आप सब लोग जल्दी से अपने हमले का आगाज करें ताकि बुस्तान के महाज से इराक की तवज्जो हटाई जा सके। इसी वजह से अगले दिन यानी 11 दिसंबर 1981 को हमला करने का फैसला किया गया। हम वलवले और जोश से भरे हुए थे। अगले रोज मुल्क के मगरबी महाज की चोटियों पर एक बड़े और वसी हमले का आगाज होने जा रहा था। किसी भी चीज के बारे में पेशगोई नहीं की जा सकती थी। उस रात तमाम जवानों के अलविदाई मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते थे। पिलाकर हमले का दिन आन पहुंचा। मुख्तलिफ महाजों पर जवानों की शदीद कार्रवाइयों से बहुत से अहम और स्ट्रेटिजिक इलाके जैसे हाजियान और गोरख के दर्रे, बर आफ्ताब का इलाका, सरततान और इसी तरह चंद दीगर इलाके और गांव आज़ाद करवा लिए गए। मरकजी महाज पर कुछ टीलों और दरिया पर कब्जा करने के बाद हमारे फौजी जवान अनार की चोटियों की तरफ बढ़ने लगे। दुश्मन दीवानावार आग बरसा रहा था। बास बटालियन टीलों को अबूर करते हुए शियाकोह की चोटियों के ऊपर तक जा पहुंची। दुश्मन अच्छी तरह जानता था कि शियाकोह के हाथों से जाते ही वो इराक के शहर खानकीन से हाथ धो बैठेगा। यही वजह थी कि उसने इन चोटियों और जंग के इलाके में अपनी ज्यादा से ज्यादा फौज उतार दी थी। आधी रात को वायरलेस से पैगाम मिला। हसन, बालाश और जमाल ताजिक अपने जवानों के साथ मरकजी महाज से निकल कर शियाकोह पहुँच गए हैं और मजीद कुमक मांग रहे हैं। थोड़ी देर बाद इब्राहिम ने फ़ोन किया। अनार की तमाम चोटियां आज़ाद हो चुकी हैं, फ़कत एक चोटी जो बहुत ही हसास और अहम मुकाम पर है, हमें शदीद दिफा करना पड़ रहा है, हमारे पास ज़्यादा नफरी भी नहीं है। मैंने इब्राहिम से कहा, सुबह होने से पहले पहले इमदादी नफरी लेकर तुमसे आन मिलूंगा, तुम फौजी अफसरान से मिलकर मनसूबा बंदी शुरू करो और जैसे तैसे हो इस टीले को आज़ाद कराओ। मैं इमदादी नफरी पर मुश्तमिल एक बटालियन लेकर मरकजी महाज की तरफ चल पड़ा। हम लोग रास्ते में ही थे कि सिपाह के मरकजी दफ्तर से इत्तला मिली कि दुश्मन ने बुस्तान पर कब्जे का ख्याल दिल से निकाल दिया है, लेकिन उसने बहुत भारी तादाद में फौज तमाम महाज की तरफ भेज दी है। तुम लोग डटकर दिफा करो, इंशाल्लाह मरीवान की सिपाह पासदारान हाज अहमद की कमान में जल्द ही अगले हमले का आगाज करने वाली है। इसी पैगाम के ज़िम्न में उन्होंने फौज और सिपाह के जवानों की आपस में बेहतरीन हम आहंगी और मनसूबाबंदी की तारीफें की और बताया, मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक आप लोगों के हमले ने इराकी फौज को भारी नुकसान से दोचार किया है। अब इराकी फौज के हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया है कि इस महाज पर मजीद इमदादी फौज भेजी जाए। तुलुए आफ्ताब का वक्त हो चला था, रास्ते में हमने नमाज फजर अदा की। अभी हम अनार के इलाके में न पहुंचे थे कि गीलाने गर्ब के महाज पर गुलाम अली की शहादत की खबर ने हमें सोगवार कर दिया। हम जैसे ही अनार की चोटियों पर पहुंचे तो एक जवान ने आगे बढ़कर खालिस मशदी लहजे में मुझे बताया, हाज हुसैन, क्या आपको मालूम है कि इब्राहिम शहीद हो गए हैं? मेरा बदन लरस कर रह गया। मैंने थूक निगलते हुए कहा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इब्राहिम की गर्दन पे एक गोली लगी है। मेरा रंग उड़ गया, सर घूमने लगा, मैं बेख्तियार सामने वाले मोर्चों की तरफ भागने लगा। सारे रास्ते मेरे जहन में वो तमाम लम्हात फिल्म की तरह चलने लगे जो मैंने इब्राहिम के साथ गुजारे थे। मैं तिब्बी इमदाद वाले मोर्चे में उतरकर उसके सिरहाने पहुंच गया। इब्राहिम की गर्दन में एक गोली पेवस्त हो गई थी, उससे बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने जवाद को ढूंढ कर पूछा, इब्राहिम को क्या हुआ है? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, हमने फौज के अफसरान से बात की कि टीले पर कैसे हमला करें। इराकी डटकर मुकाबला कर रहे थे, टीले के ऊपर और आसपास उनके बहुत से फौजी थे। हमने लाख जतन किए मगर किसी नतीजे तक ना पहुंच सके। सुबह की अजान होने वाली थी और हमें कुछ ना कुछ करना था, लेकिन कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक इब्राहिम मोर्चे से निकलकर इराकियों के टीले की तरफ बढ़ने लगा और पत्थर की एक सिल पर रूबा किबला खड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज से अजान फजर देना शुरू कर दी। हमने बहुत शोर मचाया कि इब्राहिम पीछे आ जाओ, इराकी अभी तुम्हें मार देंगे, लेकिन हमारी चीखों पुकार का कोई फायदा ना हुआ। वो तकरीबन सारी अजान दे चुका था। हमें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इराकियों की फायरिंग रुक चुकी थी, लेकिन उसी वक्त एक गोली चली और इब्राहिम को आकर लगी। इसके बाद हम उठाकर उसे पीछे ले आए।